एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सपनों, क्रिएटिविटी और जबरदस्त लीडरशिप के बारे में।
हाँ, रॉबर्ट आइगर की द राइड ऑफ अ लाइफटाइम, डिज्नी वाले आएगा।
बिल्कुल, ये वो कहानी है कि कैसे एक आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक को, मतलब डिज्नी को, पूरी तरह से बदल दिया।
और ये सिर्फ एक सीईओ की कहानी नहीं है, ये आज के दौर में, मतलब इस तेजी से बदलती दुनिया में कैसे नेतृत्व किया जाए, उस पर एक तरह की मास्टर क्लास है।
हाँ, क्योंकि आज चीजें इतनी तेजी से बदल रही है ना, तो आइगर के जो सिद्धांत हैं, आशावाद, हिम्मत, फोकस, ये सब बहुत काम के लगते हैं।
बिल्कुल, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी। तो चलें इस राइड पर।
हाँ जरूर, चलिए शुरू करते हैं।
तो पहले जरा समझें कि ये रॉबर्ट आइगर हैं कौन, मतलब कहाँ से शुरू किया इन्होंने। इनका सफर कमाल का है। सोचिए, कोई हफ्ते के सिर्फ $150 पर एबीसी में स्टूडियो सुपरवाइजर की नौकरी शुरू करें।
हाँ, $150 हफ्ते।
हाँ, और फिर 45 साल बाद उसी नेटवर्क की पेरेंट कंपनी यानी डिज्नी का सीईओ बन जाए। ये तो
कमाल है,
कमाल है।
45 साल का सफर। और सीईओ कब बने? 2005 में ना?
हाँ, 2005 से 2020 तक। और ये 15 साल डिज्नी के लिए मतलब एक क्रांति जैसे थे। उनके आने पर कंपनी की वैल्यू थी करीब $48 बिलियन, और जब वो हटे तो वो बढ़कर $240 बिलियन से भी ज्यादा हो गई थी।
बाप रे, 5 गुना। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी सोच, उनकी स्ट्रेटेजी का नतीजा है।
बिल्कुल, और वो बड़े बड़े अधिग्रहण, मतलब एक के बाद एक धमाके।
हाँ, पिक्सार है ना, 7.4 बिलियन, फिर मार्वल 4 बिलियन, फिर लूकस फिल्म यानी स्टार वॉर्स, वो भी 4 बिलियन में,
और फिर सबसे बड़ा वाला 21st Century Fox का बड़ा हिस्सा, वो तो 71 बिलियन से ज्यादा का था।
कमाल है, ये सिर्फ सौदे नहीं थे, इन्होंने डिज्नी को पूरी तरह से बदल दिया, उसकी कहानियों का दायरा ही बदल गया।
और यही आइगर की खूबी है, उनमें ना वो क्रिएटिविटी की समझ और बिजनेस चलाने का हुनर, दोनों का गजब का बैलेंस था।
हाँ, ये जरूरी है।
वो स्टीव जॉब्स और जॉर्ज लुकास जैसे जीनियस लोगों के साथ काम कर पाए, उनका भरोसा जीता, और फिर जब टेक्नोलॉजी बदली, स्ट्रीमिंग आई, तो डिज्नी प्लस जैसा बड़ा कदम उठाया। ये किसी बाहरी एक्सपर्ट की थ्योरी नहीं, ये उनकी अपनी कहानी है, अंदर की बात।
तो ये किताब द राइड ऑफ अ लाइफटाइम सिर्फ उनकी आत्मकथा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से लीडरशिप गाइड भी है। आइगर खुद कहते हैं कि आज सफल होने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजी काफी नहीं है। जरूरी है सही मूल्य, हिम्मत और लोगों का सम्मान, इन चीजों पर टिके रहना।
मतलब लीडरशिप का एक मानवीय पहलू भी है।
बिल्कुल, किताब का जो मेन आइडिया है वो यही है कि 4 चीजें, ऑप्टिमिज्म, करेज, फोकस और डिसाइसिवनेस, ये 4 पिलर हैं।
अच्छा, ऑप्टिमिज्म, करेज, फोकस, डिसाइसिवनेस।
हाँ, और जब आप इन्हें ईमानदारी और क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल दौर से निकल सकते हैं।
ये सुनना अच्छा लगता है। ये किताब हमें उनके पूरे सफर पर ले जाती है, शुरू से आखिर तक।
हाँ, उनके एबीसी के दिलों से लेकर डिज्नी के टॉप तक। इसमें सफलताएं हैं, असफलताएं भी हैं, वो मुश्किल फैसले हैं।
अच्छा, गलतियां भी बताते हैं?
हाँ, खुलकर बताते हैं। और वो पल जब बड़े फैसले लिए गए, जैसे वो पिक्सार वाली डील, स्टीव जॉब्स को कैसे मनाया।
हाँ, वो तो मुश्किल रहा होगा।
या फिर मार्वल को डिज्नी में लाने पर अंदर क्या दिक्कतें आई, बोर्डरूम की पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी का चैलेंज, स्ट्रीमिंग, सब कुछ है इसमें। ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जैसी है।
दिलचस्प, तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब के जो हिस्से हैं, लर्निंग और लीडिंग, पहले लर्निंग वाले हिस्से की बात करें।
हाँ, तो शुरुआत एबीसी से, छोटे मोटे काम, लेकिन आइगर कहते हैं वही उन्होंने बेसिक चीजें सीखी, मेहनत, टाइम पर आना, तैयारी करना।
ये तो जरूरी है।
और उनके एक बॉस थे रूनी अर्लिश, वो परफेक्शन के पीछे पड़े रहते थे। उनसे आइगर ने सीखा उत्कृष्टता का निरंतर पीछा, मतलब कभी भी काम चलाओ रवैया नहीं अपनाना, हमेशा बेस्ट देना।
रिलेंटलेस परसूट ऑफ परफेक्शन, ये अच्छी सीख है।
फिर एक मोड़ आया जब कैपिटल सिटीज नाम की कंपनी ने एबीसी को खरीद लिया, और यहाँ उन्हें 2 कमाल के मेंटोर मिले, टॉम मर्फी और डैन बर्क।
अच्छा, मेंटोर्स का बड़ा रोल होता है।
बिल्कुल, इन दोनों से आइगर ने सीखा विनम्रता, ईमानदारी और लोगों का सम्मान करना। उनकी लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, अच्छे लोगों को लाओ, उन्हें रास्ता दिखाओ और फिर उन पर भरोसा करो।
ये बाद में काम आया होगा जब उन्होंने आइजनर को देखा।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1996 में डिज्नी ने कैपिटल सिटीज एबीसी को खरीद लिया। अब आइगर डिज्नी में थे और उनके बॉस थे माइकल आइजनर।
आइजनर का दौर तो डिज्नी के लिए बड़ा अहम था।
हाँ, आइगर मानते हैं कि आइजनर शुरू में बहुत क्रिएटिव और विजनरी थे, उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा भी, लेकिन आइजनर के कार्यकाल के अंत तक वो थोड़े माइक्रो मैनेजर हो गए थे, हर छोटी चीज में दखल और थोड़े निराशावादी भी।
अच्छा,
तो आइगर ने उनसे ये भी सीखा कि एक लीडर को कैसा नहीं होना चाहिए, कैसे डर का माहौल टीम को तोड़ देता है।
ये भी एक तरह की सीख है। फिर आया लीडिंग वाला दौर, 2005 में सीईओ बनना।
हाँ, और ये आसान नहीं था, बहुत शक था लोगों को, कंपनी के अंदर भी बाहर भी, कि क्या ये टीवी वाला आदमी डिज्नी को चला पाएगा। लेकिन आइगर ने आते ही अपनी दिशा साफ कर दी, तीन चीजों पर फोकस किया, सिर्फ तीन।
क्या थी वो तीन चीजें?
पहला, दुनिया का बेस्ट ब्रांडेड कंटेंट बनाना, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को अपनाना, उससे डरना नहीं। और तीसरा, डिज्नी को सचमुच ग्लोबल बनाना।
ये फोकस वाली बात अहम है, आते ही क्लैरिटी दे दी।
बिल्कुल। और फिर पहला बड़ा कदम, पिक्सार का अधिग्रहण, $7.5 billion।
ये तो बहुत बड़ा रिस्क था, डिज्नी एनिमेशन खुद अच्छा नहीं कर रहा था उस वक्त।
जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थे स्टीव जॉब्स। वो डिज्नी से बहुत नाराज थे।
ओहो, उन्हें मनाना तो टेढ़ी खीर रहा होगा।
बिल्कुल। आएगा बताते हैं कि ये सिर्फ पैसे का सौदा नहीं था, ये भरोसा जीतने का सौदा था, स्टीव जॉब्स को यकीन दिलाना कि पिक्सार की पहचान बनी रहेगी।
और वो कामयाब रहे, ये उनकी पहली बड़ी जीत थी शायद।
हाँ, और ये हिम्मत आगे भी दिखाई, फिर मार्वल को खरीदा, $4 billion। इस पर भी कंपनी में बहस हुई
कि क्या आयरन मैन और मिकी माउस एक साथ चल पाएंगे।
हाँ बिल्कुल, यही सवाल था, क्या ये डिज्नी के फैमिली ब्रांड को सूट करेगा। लेकिन आइगर ने भविष्य देखा, उन्होंने कहानियों की ताकत को समझा।
उनका वो मंत्र था ना, इनोवेट और डाई।
हाँ, नयापन लाओ या खत्म हो जाओ, वो जानते थे कि बदलते वक्त के साथ बदलना होगा।
फिर स्टार वॉर्स, ल्यूकस फिल्म का अधिग्रहण, $4.05 billion, यहाँ क्या चुनौती थी?
यहाँ पैसा उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना जॉर्ज लुकास का भरोसा जीतना था। स्टार वॉर्स उनके बच्चे जैसा था।
हाँ, उनकी लेगेसी थी।
आइगर को उन्हें यकीन दिलाना था कि डिज्नी इस विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएगा। इसके लिए आइगर ने लुकास के साथ पर्सनल रिश्ता बनाया, उनकी बातें सुनी।
मतलब ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, ये रिश्तों का भी खेल था।
बिल्कुल। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का मोर्चा भी संभाल रहे थे, नेटफ्लिक्स आ गया था, स्ट्रीमिंग बदल रही थी सब कुछ।
हाँ, वो तो बड़ी चुनौती थी सबके लिए,
कई कंपनियां डर गईं। लेकिन आइगर ने इसमें मौका देखा और बहुत बड़ा साहसिक फैसला लिया, डिज्नी प्लस लॉन्च करने का।
हाँ, अपने केबल बिजनेस को दांव पर लगाकर।
हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था, भविष्य के लिए वर्तमान के मुनाफे को खतरे में डालना, ये दूर की सोच थी।
और फिर वो फॉक्स वाली डील, $71.3 billion, वो किस लिए?
स्ट्रीमिंग की लड़ाई के लिए हथियार जुटाना, उन्हें कंटेंट चाहिए था, बहुत सारा कंटेंट, फिल्में, शोज। रूपर्ट मर्डोक के साथ वो बातचीत आसान नहीं थी। लेकिन आइगर ने वो कर दिखाया, इसने डिज्नी को कंटेंट का बेताज बादशाह बना दिया।
कमाल की स्ट्रेटजी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बिजनेस और पैसों के बारे में था?
नहीं, यही आइगर की किताब अलग है, वो बार बार मूल्यों पर आते हैं, ईमानदारी, सम्मान। वो ऑरलैंडो की दुखद घटना का जिक्र करते हैं कि कैसे कंपनी ने मानवीय मूल्यों को ऊपर रखा।
अच्छा, मतलब इंसानियत भी जरूरी है।
उनके लिए लीडरशिप सिर्फ नंबर गेम नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है।
तो अगर हम इस पूरी कहानी के मुख्य सबक देखें, क्या निकल कर आता है? पहला तो शायद आशावाद है।
हाँ बिल्कुल, पर ये वो वाला आशावाद नहीं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है मुश्किलों को हल करने का एक प्रैक्टिकल भरोसा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड।
हाँ, टीम को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है।
दूसरा है हिम्मत, बड़े सोचे समझे जोखिम लेने की हिम्मत। आइगर का मानना था कि कुछ ना करना ही सबसे बड़ा जोखिम है।
जैसे पिक्सार, मार्वल, फॉक्स, डिज्नी प्लस, ये सब बड़े रिस्क थे।
हाँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क थे, पूरी तैयारी के साथ।
तीसरा सबक, फोकस। वो तीन पिलर वाली बात, ज्यादा चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान लगाना।
सही कहा, जैसे हम भी अपनी लाइफ में देखते हैं, मल्टीटास्किंग हमेशा काम नहीं करती।
बिल्कुल। चौथा क्या कहेंगे?
ईमानदारी और शालीनता, इंटेग्रिटी और डिसेंसी। सफलता कैसे मिली ये बहुत मायने रखता है। लोगों से सम्मान से पेश आना,
ये विश्वास बनाता है।
हाँ, और विश्वास ही सब कुछ है, ये उन्होंने अपने मेंटोर से सीखा था।
पांचवा,
उत्कृष्टता का पीछा, मतलब मीडियोक्रिटी को स्वीकार न करना, हमेशा बेस्ट के लिए कोशिश करना।
चलता है वाला एटीट्यूड नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। छठा है बदलाव को अपनाना, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, उसे दोस्त बनाना। इनोवेट और डाई।
ये तो आज बहुत जरूरी है।
और आखिरी पर बहुत अहम, रिश्तों का महत्व। बिजनेस लोगों से ही चलता है। स्टीव जॉब्स, जॉर्ज लूकास, इनसे रिश्ते बनाना जरूरी था। सुनना, समझना, ईमानदारी से बात करना।
सही बात है। किताब में कुछ यादगार लाइनें भी होंगे।
हाँ, कई है। पहले तो वही, इनोवेट और डाई। नयापन लाओ या खत्म हो जाओ, ये आज की सच्चाई है।
बिल्कुल। और
दूसरी, वैल्यू एबिलिटी मोर देन एक्सपीरियंस। अनुभव से ज्यादा क्षमता को महत्व दो, नए लोगों को मौका दो।
हाँ, ये अच्छी सोच है। अक्सर लोग सालों के अनुभव में अटक जाते हैं।
और आशावाद पर ये लाइन देखिए, यू कांट कम्युनिकेट पेसिमिज्म एंड लीड पीपल टुवर्ड अ विजन ऑफ सक्सेस। आप निराशा फैलाकर लोगों को सफलता की ओर नहीं ले जा सकते।
कितनी सही बात है। लीडर का मूड बहुत असर डालता है।
और ईमानदारी पर ये, ट्रू इंटेग्रिटी इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट वेपन।
सच्ची ईमानदारी एक गुप्त हथियार की तरह है।
गुप्त हथियार मतलब?
मतलब जब आप सही होते हैं तो आपको एक अंदरूनी ताकत मिलती है। लोग आप पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
गहरी बात है। अब सवाल ये है कि हम इन सब बातों को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। ये तो बड़े सीईओ की बातें लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वो फोकस वाली बात, क्या हम अपने काम में या पढ़ाई में 2-3 सबसे जरूरी चीजें तय कर सकते हैं?
हाँ, और बाकी चीजों को शायद ना कहना सीखें। एक स्टॉप डूइंग लिस्ट।
बिल्कुल। और आशावाद, जब कोई मुश्किल आए तो प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय सोल्यूशन पर करें। ये कैसे हो सकता है, ये सोचें।
कोशिश तो कर ही सकते हैं, और ईमानदारी वो तो हर जगह लागू होती है, अपने रिश्तों में, काम में।
हाँ, छोटी छोटी बातें, सच बोलना, वादा निभाना, दूसरों की सुनना।
और वो रिस्क लेने वाली बात, जरूरी नहीं बड़ा रिस्क हो, शायद कुछ नया सीखना।
हाँ, या अपनी राय रखना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आइगर की कहानी यही दिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और सीखते रहना पड़ता है।
मेरे लेना इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यही है कि इतने बड़े लेवल पर, जहां अरबों डॉलर दांव पर हों, आखिर में बात इंसानी मूल्यों पर आ जाती है। भरोसा, सम्मान, ईमानदारी।
सही कहा, सफलता सिर्फ नंबर नहीं है,
ये भी है कि आपने वो रास्ता कैसे तय किया।
मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि लीडरशिप एक बैलेंस बनाने का नाम है, क्रिएटिविटी और कॉमर्स के बीच, पुरानी चीजों और नई चीजों के बीच, विनम्रता और हिम्मत के बीच। और आइगर दिखाते हैं कि ईमानदारी और शालीनता कमजोरी नहीं, असली ताकत है। ये आपको सही रास्ता दिखाते हैं।
एक वाकई प्रेरणा देने वाली कहानी है।
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।